लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रताड़ना के शिकार बने ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों को संपूर्ण कलीसिया की प्रार्थनाओं एवं भौतिक सहायता द्वारा समर्थन और संबल प्राप्त हो। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। विश्व मंडल के ईश्वर, वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दाख बारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। तेरी दाख लता काट कर जलाई गई है, तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी, तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे। तू हमें नव जीवन प्रदान करेगा और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 80वें भजन के अंतिम 5 पद। इन पदों की व्याख्या से ही हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में ईश प्रजा प्रभु से याचना करती है कि वे वापस उसके पास आएं तथा उसके कष्टों को उबारें। इस तथ्य का हम सिंहावलोकन कर चुके हैं कि 80वें भजन के 1 से लेकर 7 तक के पद ईश प्रजा की पहली प्रार्थना थी, 8 से लेकर 14 तक के पद दूसरी प्रार्थना और 15 से लेकर 20 तक के पदों में तीसरी प्रार्थना, जिसमें इजरायली जाति ईश्वर को एक प्रकार से चुनौती देती है और उनसे कहती है कि वे उस दाख बारी को आकर स्वयं देखें कि किस निष्ठुरता से उसकी दाख लताएं काट डाली गई हैं। वह प्रभु ईश्वर को याद दिलाती है कि वह उनका पहलौठा पुत्र है। इजरायल ही वह प्रजा है जिसे प्रभु ने शक्ति प्रदान की थी और अब जब उसकी दाख लताएं काट कर जलाई जा रही थी, प्रभु आए और उसका उद्धार करें। एक प्रकार से स्तोत्र ग्रंथ का 80वां भजन इजरायली रूपी उस अंगूरी की कहानी है जो अपने मिशन में असफल हो गई थी। बाइबल आचार्यों का मानना है कि 80वें भजन में इजरायल की उन 9 जातियों की प्रार्थना निहित है जो निष्कासन से कभी वापस नहीं लौटी थी। तथापि हमें नबी एजेकियल की आशा पर गौर करना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि कुछ वापस लौटी थी और उन्होंने ईश आज्ञा का पालन किया था। इस स्थल पर यह ध्यान में रखना हितकर होगा कि प्रभु ईश्वर की संविदा सदा सर्वदा के लिए है। ईश आज्ञाओं का उल्लंघन करने वालों को कष्ट होता है, जैसा कि इसराइल की कुछ एक जातियों को हुआ था। किंतु जो लोग ईश्वर के आदेश अनुकूल जीवन यापन करते हैं, वे सुख समृद्धि और मुक्ति के भागीदार बनते हैं।
वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम बनाय संसार सुंदरम।
ये विश्व सारा तुम्हारी काया, तुम्हारे सदाय सत्यम तनाय संसार सुंदरम।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 81वें भजन पर दृष्टिपात करें। 17 पदों वाला 81वां भजन शिविर पर्व के अवसरों पर गाया जाने वाला आसाफ द्वारा रचित गीत है। यह भजन शिविर पर्व यानी कि तंबुओं के पर्वों पर गाया जाने वाला गीत है। जैसे जैसे समय बीता, इसराइल में तंबू या शिविर पर्व के विकसित होने के 3 कारण देखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह पर्व तीसरी फसल कटने पर मनाया जाने वाला पर्व था। लगभग सितंबर माह में अंगूर की फसल काटी जाती है और यह उसी समय का उत्सव रहा करता था। द्वितीय, जैसा कि 81वें भजन के 6वें पद में हम पढ़ते हैं, यह गीत मिस्र की गुलामी से इसराइल को मिली मुक्ति हेतु ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का गीत है। इस पर्व के उपलक्ष्य में इजरायली लोग वृक्षों की छालटियों और पत्तों से बने तंबुओं में रहते थे, जिससे वे उन दिनों को ना भूलें जब लाल सागर पार कर लेने के उपरांत प्रतिज्ञात देश तक जाने वाली तीर्थ यात्रा के दौरान सिनई पर्वत के बीहड़ों में उन्होंने कष्ट कर जीवन यापन किया था। तीसरी बात, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो चुकी थी और वर्षा ऋतु आरंभ होने को थी। वर्षा के आने पर ही नव कृषक वर्ष का चक्र चल सकता था और इसी के अनुसार इजरायली लोगों ने इसे नव वर्ष की शुरुआत का पर्व मान लिया। श्रोताओं, इसी पर्व का संदर्भ नवीन व्यवस्थान में संत योहन रचित सुसमाचार में हमें मिलता है। सुसमाचार के 7वें अध्याय के 37वें पद में हम पढ़ते हैं, पर्व के अंतिम दिन और मुख्य दिन येसु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि 81वें भजन के रचयिता के युग में इसराइल ने प्रभु ईश्वर से वर्षा के आने के लिए प्रार्थना की थी, जिसके बिना उसका जीना असंभव था। और उनकी इस प्रार्थना में यह याचना भी जुड़ी थी कि प्रभु ईश्वर अपना आत्मा ईश प्रजा तक प्रवाहित करें। 81वें भजन के प्रथम 5 पद इस प्रकार हैं, हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ, याकूब के ईश्वर का जय जयकार करो, गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ, पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ, यही इसराइल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। श्रोताओ, भजन के इन शब्दों से स्पष्ट है कि किसी पर्व के आयोजन के पीछे कोई न कोई महत्वपूर्ण बात रहा करती है, जिसके बिना कोई पर्व नहीं होता। और 81वें भजन का पर्व इसीलिए मनाया जा रहा था कि यह प्रभु की इच्छा थी कि लोग शिविर पर्व मनाएं। उक्त पदों के आनंद का गीत गाओ, ईश्वर का जय जयकार करो आदि सभी बहुवचन में किए गए आह्वान है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी पर्व सामुदायिक रूप से मनाई जाने वाली घटना है। पर्व कभी भी एकल व्यक्तियों की घटना नहीं होता है, पर्व सदैव एक साथ मिलकर मनाया जाता है। और ऐसा ही प्राचीन व्यवस्थान के युग में भी था। 15 दिनों तक जारी रहने वाला उत्सव मनाना नए चांद के साथ डफली वीणा और तानपुरा बजाकर शुरू होता था तथा पूर्णिमा के दिन नए मास की तुरही से उसका समापन होता था, क्योंकि यही इसराइल का विधान है, यही याकूब के ईश्वर का आदेश।